सच्ची भक्ति हो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी धन जन पुत्र परिवार नहीं चाहता। तो ये इन्होंने जब गुरु के जी के पास में बहुत बातें हैं, आज संक्षेप में हमको संचालक महोदय जी ने 10 मिनट का समय दिया था, शायद 10 मिनट तो पार हो गया, मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ। अब जो बातें हैं मैं आज तो उतना ही कह करके मैं समाप्त करता हूँ। अब अगले दिन कल मैं अपनी सेवा वहाँ पर अर्पित करूँगा, तब एक दो बातें मैं बतला देता हूँ, और कुछ हृदय की अभिव्यक्ति कुछ लोभ नहीं छोड़ पाता, इसलिए 2 मिनट केवल और लूंगा कि ये इनका नाम जब अपने गुरु के पास में आए तो इन्होंने रख दिया इनका नाम अपराकृत प्रभु। अपराकृत किसको कहते हैं? ये जगत को हम जिसके देखते हैं इसका नाम है साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ये इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, जो आंखें स्वयं कुछ नहीं देखती हैं, दूसरों के प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर के देख सकती हैं, इसमें स्वयं प्रकाश नहीं है, अब ये अंधकार हो जाए हम देख नहीं सकेंगे, इसलिए ये आंखें नहीं देखती, इंद्रियां कोई चीज को नहीं देख सकती, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम राष्ट्रपति, हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ हैं, हम ईसाई बौद्ध क्रिश्चियन हैं, किंतु यह ठीक नहीं है, ये सब मिथ्या है। जगत तो मिथ्या नहीं है, किंतु जगत के प्रति हमारा जो व्यवहार है, ये हमारी स्त्री है, मैं ये शरीर हूं, ये जो संबंध है ये मिथ्या है। संसार यदि मिथ्या होता तो हमारे गुरु और भगवान भी सभी मिथ्या हो जाए, इसलिए मिथ्या नहीं है, कि इसके साथ में हमारा जो संबंध रिलेशन है ये हमारा अनित्य है और ये स्वप्न के समान है, हमारा इसके साथ में संबंध नहीं। संबंध तो हमारा कृष्ण के साथ में, भगवान के साथ हमारा संबंध है, पर ब्रह्म के साथ में संबंध है। तो इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष, स्वर्ग की बातें परोक्ष है या जो हम नहीं देखते हैं वो परोक्ष की बातें हैं। इसे एक और बड़ी चीज होती है अपरोक्ष, अपराकृत इंद्रियों तक नहीं पहुंचे, किंतु जैसे शंकराचार्य को मोक्ष है अपरोक्ष की, और मोक्ष का विषय भूत जो निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है वो अपरोक्ष है। हमारे रामानुज इत्यादि का जो विचार है अधकृतम अतिक्रांतम अक्षजम ज्ञानम जैन स अधोक्षजम, अप्राकृत इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब अप्राकृत अपने इस इंद्रियों के द्वारा जब भगवत अनुभूति होती है तो इसको कहते हैं अधोक्षज, और इस अधोक्षज को भी पार करके, बैकुंठ को भी पार करके गोलोक ब्रजधाम में जब हम अपने स्वरूप कृष्ण के दास, कृष्ण के सखा, कृष्ण के पिता माता और कृष्ण के प्रेसी के रूप में जब हम उनको प्राप्त करते हैं तब ये होता है अप्राकृत। ये अप्राकृत अनुभूति इसको कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन से संबंध को केवल मात्र, इसलिए प्रभुपाद जी ने इनका नाम रख दिया अप्राकृत प्रभु, और उसके साथ में लगा दिया भक्ति सारंग। भक्ति सारंग रंग के सहित, रंग माने विलास, अथवा सारंग माने सारंगी जो बजती है, अर्थात वीणा इत्यादि जैसा यंत्र भक्ति का, जिसे जगत ने इसका प्रचार है, लोगों को आकर्षण भक्ति के द्वारा ये कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने यह नाम रखा। और अंत में संन्यास के बाद में इनका नाम रख दिया भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। गोस्वामी किसको कहते हैं? गोस्वामी माने कहते हैं जो समस्त इंद्रियों का दमन करने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति हो और अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, ये शब्द गोस्वामी शब्द का वाक्य है। वंश की परंपरा से गोस्वामी और ब्राह्मण नहीं होते हैं, जिसमें ये गुण हैं उनको ही गोस्वामी कहा जाता है। तो ये व्यवस्थात रूप में गोस्वामी थे और भक्ति के आचार्य थे। इस प्रकार से ये जगत में आए थे 100 वर्ष पहले और इस भक्ति धर्म का प्रचार किया, और आज हम आज इस दिन में समय कम होने से आज उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देकर के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगले दिन उनके संबंध में और जो बातें हैं उनके संबंध में मैं विवेचन करूंगा। बंखा तो पत्र घर चौक के पास
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
बाबा आप कैसा है? अच्छा सेठ जी कैसा है? अरे क्या करेंगे, हमारा औरत तो बहुत तबियत खराब है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बात पूछा, क्या कैसा है? ना हमारा औरत अच्छा हो गया लेकिन बच्चा तो गिर करके उसको पैर टूट गया, उसको आज उसको पैर टूट गया, उसको बच्चा मर गया, उसको सिर दुखाता है, उसको टाइफाइड हुआ, उसका ये हुआ, एक एक तो है जैसे समुद्र में अगर कोई स्नान करने के लिए जाए तो ऐसा कोशिश करके हम यही जो ढेव आता है इसको खा करके हम कहीं जाएंगे, बोले नहीं ढेव का ढेव पर सजाना ऐसा सजाना है एक पर एक आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग दुनिया में गुरुबन दुख प्रतिकार सुखबन बनते भी तो दुखों को प्रतिकार करके सुख करके मानते हैं। तो क्या करेगा तज्जे नित्य सुख बोधो तनाव मनते, ऐसा वस्तु के लिए कोशिश करो, ऐसा भगवान की सेवा के लिए कोशिश करो जिसको सेवा करने से तुम्हारा क्या हो। कौन वस्तु है नित्य हर वक्त जो रहते हैं है, उसको कोई विकृति नहीं होता है न प्राणांत प्रकृति विकृति जायते सज्जना, जो सज्जन को प्रकृति विकृति नहीं होता है उनका कोई विकृति नहीं होता है विकार नहीं होता नहीं नित्य तज्जे नित्य सुख आनंदमय वस्तु है बोध ज्ञानमय वस्तु है। जैसा कहा ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये हम लोग मानते हैं परिपूर्ण ज्ञानमय वस्तु भगवान है और हम लोग का जो ज्ञान है अज्ञान है ये ज्ञान नहीं है। और जब कहते हैं क्या भगवान का दर्शन किसको मिलेगा ये देह के नहीं मन के नहीं बुद्धि के नहीं किसी के नहीं किसी को आत्मावार दृष्टव्य स्वतव्य मंतव्य लिखे जा सकते आत्मा परमात्मा को देखेंगे भगवान को देख भगवान को देखने के लिए भगवान परमात्मा है परम चैतन्य वस्तु है हम भी चैतन्य वस्तु है बगैर चैतन्य वस्तु है चैतन्य वस्तु कोई नहीं दे सकता है देख सकता है तो हम चैतन्य वस्तु है। जब हमारा आत्मा को प्रकाश होगा अतः देह मन जब छूट जाए चला जाएगा तब हम लोग देख सकते हैं जीव का आवरण जीव आवरण का में पड़ गया कैसा आवरण है हम लोग को देख कैसा कहेगा हमारा कहने का बहुत इच्छा होता है लेकिन क्या कहता है देखिए आवरण हम लोग को दिखा देते हैं क्या गीता में क्या कहा है धुए ना दिए के बनी जथा गर्भ मन जफल लेना बुद्ध गर्भ तथा दे दो अभ्रुतम ये तीनों से आवृत हुआ है गीता में कहा जैसे धूमे धूम से अग्नि आवृत है जथा दर्श मरे न तो जैसा दर्पण मैला से आवृत हुआ है जो तो लेना जरायु का गर्भ आवृत है ये तीनों आवरण का बात गीता में कहा लेकिन इससे भी और आवरण का बात हम लोग कम बताते हैं। सुनिए हम लोग को गोस्वामी लोग ने बताया क्या आवरण पहले बोला धूलि आवरण उसी का बाद बोला कद्दमावरण उसी का बाद बोला कच्छावरण उसी का बाद बोला लोहावरण उसी का बाद बोला वज्रावरण इतना आवरण ये आत्मा के ऊपर आ गया जिसका धूली आवरण धूली को पूजने से धूली चला जाता है झाड़ने से चला जाता है लेकिन कर्दम आवरण वो कर्दम के और झाड़ने से नहीं जाता पानी से धोना पड़ता है
कीचड़
उसको पानी से धोना पड़ता है आओ उसका वाला कच्छावरण वो धोने से भी नहीं जाएगा उसको फाड़ना पड़ेगा और उसका बाद है लोहावरण वो फाड़ने से भी नहीं होगा उसको गलाना पड़ेगा गिलाना पड़ेगा और लोहावरण का वज्रावरण वो आग से भी गिरेगा नहीं उसके बिना में इससे फटाना पड़ेगा। ये तो हमारा आत्मा बड़े बड़े बात हम लोग करते हैं ठीक लेकिन आत्मा के ऊपर इतना आवरण पड़े हैं ये जब तक ये आवरण को हम लोग नहीं हटाएगा तब तक भगवान को नहीं मिल सकता है। जहां काम तहां नहीं राम जहां राम तहां नहीं काम जो भी रजन दोनों नहीं मिले काम कभी नहीं मिलेगा। आपका यहाँ का तुलसीदास ने दास जी ने बताया छोटी का कुमुदन बहुत है कुमुदन का छोटी एक समझ लीजिए तुलसीदास ने बताया छोटी का कुमुदन बहुत है लेकिन कुमुदन का छोटी है होरी का होरीजन बहुत है होरीजन का होरी है। ये तुलसीदास गोसाई जी ने बताया आप लोग का जन्मभूमि ये है जो पैदा हुआ था ये तो धूलि तो परम पवित्र धूलि है यहाँ का। कैसा बात पता है, छोटी का कुमुद अनुभव है, चंद्र का कुमुद जो है प्रस्फुटित होते वो उठा है, क्योंकि कुमुदन का छोटी एक तो कुमुदन का छोटी जो होते एक ही होता है, दो नहीं होता है। हाँ, तो होरी का हरिजन बहुत है, होरी का हरिजन जो बहुत है, लेकिन हरिजन का होरी एक। हम लोग ऐसा ही मानते हैं भगवान एक, लेकिन ये भगवान में किसी तरीके से प्राप्त कर सकता है। देखिए ये दुनिया जब जब तक हम लोग तो नहीं छोड़ेगा वो भगवान को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, औरत है और मर्दाना है। एक उदाहरण आप लोग के पास रख करके हमारा आज भाषण हम खत्म करेंगे। अगर भगवान का कृपा करे तो हम कह सकते हैं, नहीं तो क्या हम तो हार्ट कर दिए, हार्ट कर दिए हम हैं। डॉक्टर हमको बताया आप भाषण मार दीजिएगा, क्यों आज एनी मोमेंट यू कैन डाई, आप बात करने से आप जो कोई टाइम पर मर जा सकते हैं, हमारा हार्ट का ऐसा अवस्था। लेकिन हमने कहा जे हम ये बात नहीं सुनेंगे, हम भगवान की बात कहेंगे, अगर मर जाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, इसलिए हम हर जगह पर हम भाषण देते हैं। देखिए ये माया, ये जो भोग है, ये भोग को छोड़ना बहुत मुश्किल का बात है, क्योंकि ये वस्तु का कभी परिवर्तन नहीं होगा। औरत अगर हमारा सामना में आ जाएगा हम औरत ही देखेंगे, ये छोड़ देगा कुछ नहीं देखेंगे। औरत का साथ जो हमारा संबंध है वही भाव पैदा हो जाएगा। हाँ ये चीज है, दुनिया को चीज ऐसा ही चीज है, उसको भाव को छोड़ना बहुत मुश्किल का बात है, इसलिए हम लोग को सब कब्जा नहीं ले लिया। तो कैसा ये जब कैसा छोड़े हम ये लोग इसको। देखिए बिल्ल मंगल का बात आप लोग सुनिएगा, हैं बिल्ल मंगल ठाकुर सूरदास, उन्होंने उनका स्त्री ठीक था लेकिन तब भी चिंतामणि बेचा के ऊपर उनको बहुत आकर्षण था। ऐसा एक रोज हुआ इतना पागल हो गया चिंतामणि के लिए, जो चिंतामणि का पैलेस था, चिंतामणि ऐसा बारोबली का नहीं था, बेचता नहीं था, बड़े बड़े आदमी उसके पास जाते थे, उसको पैलेस था। तो उसका घर था नदी का उस तरफ, चिंता बिल्ल मंगल आगे नदी का पास, पानी बरसने लगे, वायु बातास होने लगे, उसी वक्त क्या किया, क्या करे, पागल हो गया चिंतामणि के लिए। देखा कि एक तो लकड़ी भाग के जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए चिंता बिल्ल मंगल, उस तरफ चले गए। फिर कैसा जाएगा, उसका तो जो पैलेस है वो तो बंद है, एकदम क्यारी बंद है, जा नहीं सकते अंदर में। कैसा करे तो देखते एक तो रस्सी झूलता है, उसको पकड़ करके उसको उस तरफ चले। जब गिर पड़ा शब्द हुआ, चिंतामणि दौड़ के आए, अरे कौन है, ठाकुर है, अरे आप कैसे आए, ये दुर्योग में कैसे आ गया। बोला हम क्या करें, तुम्हारे लिए बहुत हम पागल हो गया इसलिए हम आए। कैसे आए आप, दिखा सकते हैं, वहां चलो दिखाया। देखो उससे उसका ऊपर से हम आए, अरे ठाकुर आपने क्या किया, अरे ये तो मुर्दा है, गंदा है, इसका ऊपर से आप आया, इसको मुर्दा नहीं देखा। बोले नहीं तो हम तो मुर्दा नहीं देखा, अरे ये तो साफ है, ये काटने से मर जाएगा आदमी, इसको पकड़ के तुम उतरवा गया, सांप देखा नहीं। बोले नहीं, देखिए सांप भी देखा नहीं, मुर्दा भी देखा नहीं, क्यों, चिंतामणि का ऊपर उसको नजर था, उसको ऊपर उसको भावना था, इसलिए सांप भी नहीं देखा और मुर्दा भी नहीं देखा। देखिए वस्तु को भाव चला गया। उसी वक्त चिंतामणि ने कहा, कही, अरे हमारा ऊपर तुम्हारा जैसा भाव है इसी प्रकार थोड़ा से बार भगवान के ऊपर हो जाता तुम्हारा मुक्ति हो जाता। इसे तुलसीदास गोसाई जी ने भी यहां कहा था, उनको स्त्री उनको कही थी क्या, धिक धिक वही प्रेमिका कहा कहू हम मैना उसकी चरण मय देह ममता दई की प्रति तो सिद्धारण हो तो मत भव थी। तुलसीदास जी ने उनको स्त्री ने कही थी, इसलिए उनको रामचंद्र में चले गए उन्होंने, तो उनका भी विराज जा गया सूरदास को, ये बिल्ल मंगल को, बिल्ल मंगल तब चलने शुरू किया वृंदावन की तरफ। जाते जाते देखा एक तालाब में औरत लोग स्नान करते हैं नंगा होकर के, तो उसी का अंदर में एक बुरी दंपति था, बहुत खूबसूरत था, उसको देख करके फिर उसको काम जा दिया। तो उसी जमाना में ऐसा था, अतिथि भी ऐसा वस्तु मांगने से देना पड़ता था। वो तो गया बनी के घर पर जाकर के कहा था, बनी कहाँ रहिए, हमारा स्त्री को आपको पास भेज देते हैं। उसके पत्नी को कहा जाओ तुम जाओ घर में। लेकिन पत्नी तो था छोटी शादी है, उन्होंने क्या किया डरती हुई आई ठाकुर क्या मांगते हैं। तो बिल्ल मंगल कहते हैं उसका चित्त बदल हो गया तो तुम्हारा माथा के दो ठो कांटा हमको दो। वो लेकर के वो दोनों आंख को वो फूटा दिया। हर मौन कत तोरे नाचा है नयन, कहते हैं अरे मौन तुम ऐसा है ये नयन को हम ये कर देंगे खत्म कर देंगे। दोनों को खत्म कर दिया तो बुणिक दंपत हाय हाय किया क्या करेगा। चलते हैं बिल्ल मंगल चलते हैं आगे रास्ते में निकल गया। क्या हुआ ये बालक आकर उसको हाथ पकड़ा। सूरदास तुम कहां जाओगे, बोले हम वृंदावन जाएंगे। अरे कैसे जाओगे तुम तो आंख में नहीं दिखते हो, चलो तुमको थोड़ा हम रास्ता दिखा दें। तो ऐसा हाथ तो कभी नहीं पकड़ा बिल्ल मंगल ने। तो बिल्ल मंगल ने पूछा तुम कौन हो, कौन है तुम? ना हम बालक है ये गांव में रहते, तुम अंदर चलने नहीं सकते, तुमका हाथ पकड़ा। बोले देखो झूठ बात मत बोलो, तुम खराब बात बोलो तुम कौन है। तो भगवान समझ जाएगा तो हमको तो पहचान लिया जाए। तो हाथ को छिना लिया, जब छिना लिया तब बिल्ल मंगल ने कहते हैं हस्तम कृष्ण जातो किला कृष्ण सुमतम हृदयाजाती पौरुषम गणयामिते। हे भगवान हमने हमारा स्वभाव है हाथ पकड़ना, जिंदगी का भर में कितना हाथ हमारा पकड़ रहा है लेकिन ऐसा हाथ अमित हम कभी नहीं पकड़ा। तुम सात बार बोलो तुम कौन है, तुम जो हमारा हाथ को छोड़ करके चला गया खिला करके चला गया तुम्हारा कोई बहादुरी नहीं है। हृदय जाट आज बिल्ल मंगल का हृदय तो अगर तुम निकाल जा सकते हो तो तुमको पूर्ण गुणगान भगवान तो एक कर दिया कि हमको तो पहचान लिया। उसको पकड़ करके वृंदावन में पहुंच लिया और उसको आग दे दिया। बिल्ल मंगल सिद्ध हो गया है। ये बात ने वृंदावन या उर्मुनिक दंपति ने सुनी। वो लोग वृंदावन में आ गई, आकर के बिल्ल मंगल को कहते ठाकुर हमको पहचानते हैं। पर हम कौन है, तुम चिंतामन है। उसी बात कहते हैं उन्होंने बिल्ल मंगल, आप लोग पंडित आदमी है सब जानते चिंतामन सोमगिरी गुरु में शिक्षा गुरु भगवान सिखी पिंचमु पल्लव शिखरेशु लीला स्वयं वर रसवती जयश्री। पहले चिंतामणि को प्रणाम करते हैं चिंतामणि जयत। क्यों चिंतामणि को गुरु स्वरूप से देखते हैं। देखिए क्यों चिंतामणि को ऑर्गन जितना अंग में जितना था वो सब बदल गया थी। उसको बाल से पैर नक तक वो चिंतामणि को भोग किया बिल्ल मंगल एक रूप। वही चिंतामणि उसके पास खड़े हैं लेकिन आज चिंतामणि को भोग नहीं करते हैं, भोग का वासना नहीं होते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। किस लिए, उसको भाव परिवर्तन हो गया। वस्तु का परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन भाव परिवर्तन हो गया। संसार में रहे और संसार छोड़े जब तक ये भाव परिवर्तन नहीं होता है तब तक भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल का बात है, समझ लीजिएगा। तो चिंतामणि ने कही देखो उसी वक्त हमने जो मांगा था दिया, बोला ताबी जो मांगते हो देना पड़ेगा। क्या मांगते हो तुम, हे भगवान आपको जो मिला है वो हमको दीजिए। इसी भक्त का कृपा, भगवान भक्त का कृपा होने से भगवान को समझ सकते हैं। हम लोग का बात यही है, हम लोग भगवान को सेवा करने के लिए इस जीवन जिंदगी को दे दिया है, उनको सेवा कैसे करें। हम लोग भगवान नहीं होने मानते हैं और ब्रह्म भी नहीं उपने मानते हैं, यही हम लोग का बात है। बस आज यही बोलकर के हम समाप्त करते हैं पंचा करके।
करने में लगे रहे तब की कोई सार्थकता नहीं है तो उन्होंने कह दिया हस्तम दानम वर देता हूं। बोले ठीक महाराज आपने हाथों में तो दोष बतला दिया, अब मुझे इसके कान ही रक्षण कर लेने दो। तो बोले श्रुति कुटम सारस्वत द्रोहिणम, इन कानों ने कभी भी भगवत चर्चा को नहीं सुना, भगवत गीता की गाथाओं को इन कानों ने कभी भी नहीं सुना है, इसलिए कान भी इसके रक्षण करने योग्य नहीं। हस्तौ दान विवर्जितौ सारस्वतद्रोहिणौ। तो बोले महाराज ठीक, अब इसके नेत्र ही हमको खा लेंगे लोग। तो बोले नेत्रे साधु विलोकने न रहते, इन नेत्रों ने कभी भी सज्जनों के दर्शन नहीं किए, कभी भी भगवान की मूर्तियों के दर्शन नहीं किए, कभी संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए। तो बोले महाराज इनमें भी दोष है, कानों में भी दोष है, आंखों में भी दोष है, तो इसके पैर ही भक्षण कर रहे हैं लोग। बोले पाद तीर्थम गतौ, इन पैरों ने कभी भी तीर्थाटन नहीं किया, जो पैर तीर्थ नहीं करते वो पैर केवल इधर उधर की बाह्य बातों में लगे रहते हैं, तो उन पैरों की कोई सार्थकता नहीं। तो बोले महाराज इनमें पैरों में भी दोष आ गया। तो बोले कि अब इसका पेट तो खा लेने दो। तो बोले अन्यायार्जित द्रव्य पूर्ण उदरम, इसका उदर जो है वो अन्याय से कमाए हुए धन से और सदैव परिपूर्ण रहा है, उसको खाने में भी तुम्हारे लिए दोष लगेगा। अन्यायार्जित द्रव्य पूर्ण उदरम। तो बोले महाराज जब सब कुछ में दोष है तो फिर इसलिए इसके मस्तक को खा लेने दो। तो बोले गर्वेण तुंगम सिरः, ये सिर इतना घमंडी रहा है कि अपने से जो वृद्धजन है उनके लिए कभी इतना अभिवादन नहीं किया है, अपने से जो बुजुर्ग हैं, अपने से जो पूजनीय हैं, उनको अभिवादन करने से क्या होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो विसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या हेतु वनम्। जो अपने से पूजनीय अभिवादन करने योग्य है उनका ये हम अभिवादन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनकी चार बातें इस भौतिक संसार में बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उनका फल बढ़ता है। तो वो कहते हैं कि इसलिए इसका ये जो मस्तक है जो घमंड से सदैव ऊंचा रहा है, कभी कि किसी के लिए इसने नतमस्तक होकर के प्रभु के दरबार में जाकर के अपने इस मस्ते को भगवान की चौकट से नहीं निकला है, इस प्रकार से ये दर्द से तुंग रहने वाला सिर ये भी खाने योग्य नहीं है। बोले महाराज सभी में दोष है। रवे रे जम्बू का मंच सहता निर्देश निंदन। अब आप कहेंगे कि ये प्रकार और इतना कहना मान गया, ऐसी बात नहीं, ये मनुष्य जाति के ऊपर उपलक्षण किया गया है कि मनुष्य जाति में इतनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की सार्थकता इन बातों में नहीं। आज इन इंद्रियों की सार्थकता प्राणों के लिए जो है वो टेप रिकॉर्ड या रेडियो सुनने में है, आंखों की सार्थकता जो है सिनेमा देखने में है, इत्यादि इन इंद्रियों की जो सार्थकता हम लेते हैं वो इनमें नहीं है। इसी कारण से ये बता दिया, इस उपलक्षण का तात्पर्य यह है कि जो इन्हीं चीजों से इन्हीं कार्यों को भगवान के समर्पित नहीं करता है उसके इस मानव शरीर को और मतलब जो है जम्मू के इत्यादि कुत्ते भी नहीं खाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति अपनी इन इंद्रियों से भगवान का अर्चन वंदन सेवन पूजन मनन इत्यादि नहीं करता है वो शरीर के लिए पशु पक्षी भी ग्राह्य नहीं करते। तो इन नेत्रों की इन कानों की आज इस स्वभाव में सार्थकता ये है कि हम भगवत महात्माओं के इन अमृतमयी वाणी को सुने और सुनने के बाद वैसे तीन ही इंद्रियां काम करती हैं, श्रवण मनन और निध्यास। पहले यहाँ हम सुनने आए हैं, सुनने के बाद में कितना मतलब जो है हमको उसका मन में ले जाकर के मनन करना है। उस दिन जो बताया गया था कि शून्यताम धर्म सर्वस्वम, उस श्लोक में ये बताया गया है कि तीन इंद्रियों की सार्थकता ग्रहण करो, श्रवण करो, सुनने के बाद फिर मनन करो, मन में जब उसका दृढ़ कर लो तो उसके बाद में फिर उसको क्रिया में परिणत कर दो, क्योंकि ज्ञानम धारा क्रिया में है। जितना भी मनुष्य को ज्ञान है वो क्रिया के बिना और भारत स्वरूप है, यथा खरत चंदन भावना ही भारत से रेखता रथ चंदन। जिस प्रकार से गधा बोझ होता है, अगर उससे आप चंदन भी ला रहे हो फिर उससे ये पूछते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तो आपको वो सुनता मिलेगा वो ये कह सकता है मैं तो भारत हो रहा हूँ, उसे ये पता नहीं है कि मैं दोहा हो रहा हूँ या चंदन हो रहा हूँ। तो जब ज्ञान संतुष्ट है क्रिया में प्रगत नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि हम इन बातों को सुनकर अपने जीवन में ढालें और उनको अपने जीवन में लेकर के मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखें, तभी जाकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वस्त्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्।